परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा फिर से एक बार नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी हमेशा की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है, इन दिनों हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 17 और 18 के कुछ अंशों का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि इसराइलियों को मूर्ति पूजा और अधिकारियों की अनाज्ञाकारिता के लिए मुख्य दंड और राजाओं के लिए नियम और व्यवस्था का लागू होना, और इसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि भविष्यवक्ताओं की पहचान कैसे की जाए, अर्थात भविष्यवक्ताओं के लिए एक परीक्षण को परमेश्वर ने लागू किया ताकि वे सच्चे भविष्यवक्ता को पहचान सकें। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आने वाले भविष्यवक्ता का वायदा। तो आइए हम आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे और प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको फिर से एक बार दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। यह हमारे लिए क्या ही सौभाग्य की बात है कि हम अपने घरों में बैठकर आपके जीवित वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। इस समय जब हम आपके वचनों पर विचार विमर्श करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, उसमें से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक भाई बहनों की सहायता करें, हमें बुद्धि ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दे, और विशेष करके उन भाई बहनों के लिए भी हमारी प्रार्थना है जो निराश हैं, जो दुखी हैं, जो चिंतित हैं, जो परेशानी हालत में हैं और किसी न किसी बोझ से दबे हुए हैं। पिता परमेश्वर, आप उन पर भी अनुग्रह प्रदान करें ताकि इस अध्ययन के द्वारा वे भी अपने आत्मिक जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकें। इस समय फिर से एक बार हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 18 अध्याय और उसके 15 से 17 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 15 से 17 पद, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना, यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरे पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी, कि मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग फिर से देखनी पड़े, कहीं ऐसा न हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा कि वे जो कुछ कहते हैं सो ठीक कहते हैं। मेरे मित्रों, इसराइल के संतानों को भविष्यवक्ताओं की बातों को सुनना था, लेकिन क्यों? क्योंकि वे उन्हें सच्चाई बताया करते थे और इसका यही एक मूल कारण था, परंतु उसका दूसरा कारण यह भी था कि उनके मन को अंतिम भविष्यवक्ता, अंतिम दूत अर्थात हमारे प्रभु यीशु की बातों को सुनने के लिए तैयार करना था। बहुत से लोग आज यह सवाल करते हैं कि परमेश्वर आज की तारीख में अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करता है। मेरे मित्रों, यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने उस समय के वाक्य का अंत कर दिया। परमेश्वर ने उस पुस्तक के अंत में समाप्त लिख दिया जो कुछ वह मसीह में होकर पहले ही से संसार में कह चुका है। उससे ज्यादा वह कुछ नहीं कहना चाहता। हमें उसकी बातों को सुनना है, हमें उसकी बातों पर ध्यान लगाना है। रूपांतर के पर्वत पर परमेश्वर पिता ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, उसकी सुनो। मेरे मित्रों, उसकी सुनो, क्योंकि उसके पास ही आखिरी वचन है। आज के विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ही मूल वचन है, आखिरी आदेश, निर्णायक संपूर्णता और मनुष्य के लिए प्रकाशन है। इन्हीं बातों को मूसा व्यवस्था विवरण की पुस्तक में बहुत पहले कहता है। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय के 18 और 19 पद में, सो मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा, और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा तो मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। मेरे मित्रों, आप शायद याद कर पाए कि प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इस बात को कहा कि जो बातें मैं तुमसे करता हूँ वे मेरी नहीं परंतु मेरे पिता की बातें हैं। उदाहरण के लिए देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 30 पद, और बहुत सी बार प्रभु यीशु ने यूहन्ना 6 में भी इस बात को कहा है कि वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं परंतु अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए आया है। प्रभु यीशु मसीह की पृथ्वी पर सेवा समाप्त होने के पश्चात उसने एक महायाजक की प्रार्थना को किया जिसका वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में दिया गया है। मेरे मित्रों, जहाँ पर वह अपने पिता को निर्णायक लेखा प्रदान कर रहे हैं, कहते हैं, हे पिता, जो काम आपने मुझे करने के लिए दिया है मैंने उसको पूरा कर दिया, जो कुछ आप मुझसे कहलवाना चाहते थे वो मैंने उनसे कह दिया है। यदि परमेश्वर को स्वर्ग में से इस समय कुछ और कहना होता तो वह जो पहले ही कह चुका है छोड़कर कुछ और नहीं कहता, वह केवल अपनी बातों को ही दोहराता, क्योंकि जो कुछ वह आपसे या मुझसे कहना चाहता था उसने यीशु मसीह में होकर हमसे कह दिया है। मेरे मित्रों, इसी कारण हमको ज्योतिष कार्यक्रम से बचकर रहना चाहिए। यह मनुष्य की एक धारणा है कि वह गुप्त बातों का पता लगाना चाहता है, वह प्रकृति के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। मनुष्य के मन में एक गुप्त इच्छा होती है कि वह छुपी हुई बातों का खुलासा करे अर्थात जाने। हम में से हर एक मनुष्य के भीतर थोड़ा सा भाग कोलंबस का होता है। इस समय पर हम लोग अंतरिक्ष और समुद्र की गुप्त बातों का भेद जानना चाहते हैं अर्थात खुलासा करना चाहते हैं। हम नए नए क्षेत्रों तक पहुंचना चाहते हैं, न केवल हम इन बातों को अंतरिक्ष में परंतु मनुष्य समय में भी अपने हाथ आजमाना चाहता है। वह उस रहस्यमय भविष्य के बारे में जानना चाहता है कि कल के आगे क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है, यह सब भी जानना चाहते हैं कि क्या यह सच नहीं है। लोग भविष्य को लेकर जिज्ञासु हो जाते हैं। यह सवाल हमेशा हमारे सामने आता है कि भविष्य के बारे में क्या है। मेरे मित्रों, भविष्य एक बंद दरवाजे के समान है। यादें आपको आपके भूतकाल में वापस ले जा सकती हैं, परंतु कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो आपको भविष्य में ले जा सके। भविष्य के दरवाजे पर ये शब्द लिखे हुए हैं, दूर रहो। आज आने वाले कल के लिए मात्र बीता हुआ कल है। मनुष्य समय और दूरी के कारण सीमित है। मेरे मित्रों, इस अस्थिर इच्छा को संतुष्ट करने के लिए अन्य जातियों के बीच में ओझा, ज्योतिषी और भावी कहने वाले लोग पाए जाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को इनसे दूर रहने के लिए कहता है। यह मूर्ति पूजा के साथ जुड़ी थी और इनका संबंध शैतानिक शक्तियों से होता था। क्या वे भविष्य के बारे में बता सकते थे? जी हाँ, कुछ हद तक वे भविष्य की सच्चाई को व्यक्त कर सकते हैं। यूनानी लोगों ने डिल्फी के ओराकल का प्रयोग करके कुछ संभावित सत्य सूचनाओं को प्राप्त किया, लेकिन यह काम शैतानिक था। इस प्रकार से कहा जाता है कि हिटलर ने कुछ भावी कहने वालों को रख लिया था, और मैं इस बात को समझता हूँ क्योंकि आजकल वाशिंगटन में भावी कहने वाले भू कार्यालय का व्यापार करते हैं। शहरों के अंदर विज्ञापनों के द्वारा आप देख सकते हैं कि ज्योतिषी लोग भविष्यवाणी करने के द्वारा बहुत अच्छी आमदनी कर ले रहे हैं और बहुत संपन्न भी हैं। मेरे मित्रों, भविष्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि मनुष्य को कोई अधिकार नहीं दिया गया है। परमेश्वर ही केवल भविष्य को बता सकते हैं और यह केवल उसके ही हाथ में है। परमेश्वर के वचन के प्रमुख गुणात्मकता यह है कि यह वह वर्तमान से भी आगे कार्य करता है। मेरे पास सबसे मजबूत प्रमाण यह है कि यह बाइबल परमेश्वर का वचन है और भविष्यवाणियों की परिपूर्णता है। बाइबल का एक चौथाई भाग लिखे जाने के समय में भविष्यवाणियां थी और उसमें से अधिकतर भाग पहले ही पूरा हो चुका है। परमेश्वर ने शहरों, देशों और साम्राज्यों के संदर्भ में भविष्यवाणियों को लिखा था। इन परिस्थितियों के बीच में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े हुए होंगे, जैसा कि आज भी पाए जाते हैं। वे उस पद और उस स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं जो परमेश्वर के सर्वोच्च भविष्यवक्ताओं को दिया गया है। इसराइल अपने आप को इन झूठे भविष्यवक्ताओं से किस प्रकार बचा सका? परमेश्वर ने उनके सामने एक चिन्ह को रखा था जिसके द्वारा वे पहचान सकते थे कि झूठे भविष्यवक्ता और परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता कौन है। आइए अब हम देखते हैं सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान करने के लिए चिन्ह क्या है। मेरे मित्रों, लोगों के बीच में कुछ झूठे भविष्यवक्ता मौजूद थे जो प्रत्यक्ष था। दुर्भाग्यवश इसराइली लोग परमेश्वर के द्वारा दिए गए नियम को लागू में नहीं ला पाए जिसके द्वारा से वे झूठे भविष्यवक्ताओं को पहचान सकते थे। हम इसे यर्मिया नबी की पुस्तक 14 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। मित्रों, एक झूठे भविष्यवक्ता के लिए यह कहना सरल था कि आने वाले समय में परमेश्वर का 100 साल का राज्य आने वाला है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने भविष्य के बारे में बातें की। अब प्रश्न यह था कि कोई कैसे जाने कि सच्चा भविष्यवक्ता कौन है। आज हम इसे पहचान सकते हैं क्योंकि यिर्मयाह के बहुत से भविष्यवाणी पूरे हो चुके हैं, परंतु उस समय के लोग कैसे जानेंगे जिस समय यह भविष्यवाणी कही गई थी। इसके लिए परमेश्वर यहाँ पर एक निश्चित परीक्षण को देते हैं। तो आइए हम इसे सुने कि यहाँ पर क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 से 22 पद में लिखा हुआ है, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, वह पराए देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय ना खाना। मित्रों, आइए हम कुछ समय इसे देखने में बिताएं। यशाया परमेश्वर का एक सच्चा भविष्यवक्ता है, परंतु हम इसे कैसे जाने? उसने भविष्यवाणी की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्पष्ट चिन्ह दिया। उसका जन्म, उसका जीवन और उसकी मृत्यु भी हुई। मान लीजिए कि किसी ने यशाया से यह पूछा होता कि ये सब बातें कब पूरी होंगी, तब वह शायद उत्तर देता कि मुझे स्पष्ट रूप से नहीं मालूम, परंतु हो सकता है कि 100 साल लग जाए। और वास्तव में इसे पूरा होने में 700 साल लगे। जो भी हो, शायद भीड़ उसके ऊपर हंसती और कहती होगी कि उस समय तक जानने के लिए हम लोग नहीं रहेंगे कि वह सच कह रहा है या नहीं। उनका परीक्षा या भविष्यवक्ताओं की परीक्षा यही था कि उन्हें स्थानीय परिस्थिति में भविष्यवाणी करना था जो सही रीति व समय में पूर्ण होना था। उनकी भविष्यवाणी का कोई भी अंश बिना पूरा हुए नहीं रहना चाहिए। यदि कुछ पूरा नहीं होता तो वे परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता नहीं माने जाते थे। मित्रों, आइए अब हम फिर से यशाया को देखें। उसने कुंवारी से जन्म की भविष्यवाणी की थी और आज हम 2010 वर्ष पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि वह पूरा हुआ है और हम जानते हैं कि यह बिल्कुल सही है। परंतु उसके समय के लोग कैसे जान पाते? वे इसे जान सकते थे क्योंकि यशाया राजा यजेकेल के पास स्थानीय घटना के साथ गया। असुरों की सेना शहर के चारों तरफ थी, अर्थात शहर को घेरे हुए थी, परंतु यशाया ने कहा कि एक भी तीर शहर पनाह के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। ये अशुर अन्य देशों या राष्ट्रों को जीत चुके थे और वे यहाँ पर यरूशलेम को जीतने और इसराइलियों को बंधुआई में लेने पर थे। यशाया ने उन्हें बताया कि जो परमेश्वर ने उनके बारे में कहने के लिए उसे कहा है वह यह है। यशाया नबी की पुस्तक 37 अध्याय उसके 33 और 34 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए यहोवा अशूर के राजा के विषय में यूं कहता है कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा और न वह ढाल लेकर इसके सामने आने व इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। जिस मार्ग से वह आया है उसी से वह लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यही वाणी है। मेरे मित्रों, अशूर की सेना के पास तीर और धनुष थे। आप यह सोचते होंगे कि उनमें से किसी ने एक तीर शहरपनाह के अंदर मारी होती सिर्फ यह देखने के लिए कि शायद किसी एक व्यक्ति को तीर लग जाए। अब ध्यान दीजिए, यदि एक भी शहरपनाह के अंदर तीर चला जाता तो यशाया के परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता होने का दावा खत्म हो जाता और वह अपने कार्य से बाहर कर दिया जाता। यह एक परीक्षा था जिसमें यशाया सफल हो गया। और भी कई स्थानीय परिस्थितियों में यशाया ने कहा और वह पूर्णता उसी प्रकार से पूरा भी हुआ। मेरे मित्रों, परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता को 100% सही होना पड़ता था। परंतु आज के बारे में क्या है, यही कि ये परीक्षा सभी रूढ़िवादी और वर्तमान में अपने को भविष्यवक्ता कहने वाले और इसकी मांग करने वाले की वे भविष्य की बातों को जानते हैं और बताते हैं असफल हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वे कई बार अंदाज से तीर मारते हैं कि कहीं सही जगह पर लग जाए, परंतु कई बार उन्हें खाली हाथ ही मिलता है। कहने का मतलब है कि वे अनुमान से कुछ भी बोल देते हैं, शायद कहीं सच हो जाए, क्योंकि आप उनकी असफलताओं के बारे में नहीं सुनते हैं कि उनकी या उसकी कितनी भविष्यवाणियां असफल रही, परंतु आप सिर्फ सफलता की बातों को ही सुनते हैं क्योंकि आपको यही बताया जाता है। मित्रों, मैं आपको झूठे भविष्यवक्ताओं के कई उदाहरण दे सकता हूं। आज भी हमारे बीच में लोग हैं जो संसार के अंत के विषय में एक निश्चित तिथि या तारीख देकर कहते हैं फलाने दिन संसार का अंत हो जाएगा, विपत्तियां आएंगी, एक देश के किसी हिस्से में और अन्य बातों में घटित होंगी। मेरे मित्रों, यदि यह हम परमेश्वर के परीक्षण को इन भविष्यवक्ताओं पर लागू करें तो वे थोड़े समय में ही अपने कारोबार से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि एक सच्चा भविष्यवक्ता हमेशा समय और विश्लेषण पर सही और निश्चित होता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि आज कलीसिया के लिए कोई चेतावनी नहीं है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहे? क्यों? क्योंकि अब भविष्यवाणी है ही नहीं कि पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह और उसके वचन में आज सब कुछ पूरा हो चुका है। आज हमारे लिए चेतावनी झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहने की नहीं, वरन झूठे शिक्षकों से सावधान रहने की है। जैसा पत्रस अपनी दूसरी पत्री अध्याय 2:1 में कहता है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे। मेरे मित्रों, हमें चिताया जा रहा है कि हम ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि मनोहर प्रवचन किए जाते हैं, वाणी सुनने में अति आकर्षक लगती है, जिनमें धार्मिकता छलकती है, परंतु वे परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं देते हैं। ओह, हमारे लिए यह कैसा महत्वपूर्ण है कि हम झूठे उपदेशकों से सावधान रहें। आज हमारे बहुत से लोग झूठे उपदेशकों के चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए उचित है कि हम उस पर ध्यान दें। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 18 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 19 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे और इस अध्याय का विषय है शरण के शहर, भूमि का विस्तार और व्यवस्था का विस्तार। परमेश्वर ने शरण के शहर देने के द्वारा, भूमि की सुरक्षा के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा दी गई लिखित व्यवस्था देने के द्वारा निर्दोष लोगों पर अपने प्रेम को एक बार फिर से प्रकट किया है। आइए अब हम देखें शरण के शहर। गिनती की पुस्तक 35 अध्याय में हम सीखते हैं कि लेवियों को यर्दन के पूर्व में 3 शहर और यर्दन के पश्चिम में 3 शहर बनाने के लिए कहा गया था। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 19 अध्याय उसके 2-4 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब अपने देश के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कर देता है 3 नगर अपने लिए अलग कर देना, और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना, और अपने देश के जो कुछ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हर एक खूनी वहीं भाग जाए, और जो खूनी वहां भागकर अपने प्राण को बचाए वह इस प्रकार का हो, अर्थात वह किसी से बिना पहले बैर रखे व उसको बिना जान बूझे मार डाला हो। मेरे मित्रों, यदि किसी व्यक्ति ने किसी को विशुद्ध अवस्था में या अकस्मात मार डाला हो तो वह व्यक्ति इस शरण स्थान में जाकर शरणागत हो सकता था, अर्थात छिप सकता था, या उस व्यक्ति को सामूहिक मार खाने से बचाने के लिए, या फिर उस मारे गए व्यक्ति के रिश्तेदारों के द्वारा जो भावनात्मक रूप में उसे चोट पहुंचा सकते थे बचाने हेतु एक प्रावधान था। शरण के शहरों में पहुंचकर उसे सुरक्षा मिलती थी ताकि न्यायोचित बातें हो सके। मेरे मित्रों, यह बात बिल्कुल स्पष्ट रीति से परमेश्वर द्वारा बता दी गई थी कि यह शरण के शहर केवल निर्दोष व्यक्तियों के लिए सुरक्षा का स्थान था। उसने उन्हें उदाहरण देकर समझाया था। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 19 अध्याय उसके 5-6 पद में इसे पढ़ते हैं, जैसे कोई किसी के संग लकड़ी काटने को जंगल में जाए और वृक्ष काटने को कुल्हाड़ी हाथ से उठाए और कुल्हाड़ी बेंट से निकलकर उस भाई को ऐसी लगे कि वह मर जाए, तो वह उन नगरों में से किसी में भी भागकर जीवित रहे। ऐसा ना हो कि मार की लंबाई के कारण खून का पलटा लेने वाला अपने क्रोध के ज्वलन में उसका पीछा करके उसको जा पकड़े और मार डाले, यद्यपि वह प्राणदंड के योग्य नहीं क्योंकि उससे बैर नहीं रखता था। परमेश्वर ने विशेष रूप में व्यक्त किया था कि शरण स्थान उनके लिए कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा जो किसी हत्या के दोषी हैं। कहने का मतलब है कि जो जानबूझकर किया गया हत्या है तो उसके लिए उस शहर में कोई भी सुरक्षा नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 19 अध्याय के 11-12 पद में लिखा हुआ है, परंतु यदि कोई किसी से बैर रखकर उसकी घात में लगे और उस पर लपक कर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए और फिर उन नगरों में से किसी में भाग जाए, तो उसके नगर के पुरनिय किसी को भेजकर उसको वहां से मंगाकर खून के पलटा लेने वाले के हाथ में सौंप दें। अब हम आगे देखते हैं भूमि की सुरक्षा का अधिकार। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 19 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है उसका जो भाग तुझे मिलेगा उसमें किसी का सिवाना जिसे अगले लोगों ने ठहराया हो न हटाना। मेरे मित्रों, यहाँ बिल्कुल सत्य है कि जो स्पष्ट है कि भूमि पर डाला गया निशान पवित्र है, तो यह मनुष्य की संपत्ति की सुरक्षा को और भूमि पर उनके स्वामित्व का चिन्ह था। फिर हम आगे देखते हैं व्यवस्था का विस्तार। व्यवस्था विवरण 19 उसके 15 पद में हम पढ़ते हैं, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म व पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2-3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। फिर से ध्यान दें कि यह पद्यांश प्रकट करता है कि व्यवस्था कितनी अद्भुत थी। व्यवस्था की मांग बहुत भयानक थी और किसी भी सूरत में केवल एक गवाह पर्याप्त नहीं होता था। अगर आज के समय में कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं व्यवस्था के आधार पर जीना चाहता हूं, तो उसे अवश्य जानना चाहिए कि वास्तव में इसका क्या अर्थ है। यदि कोई झूठी गवाही देता था तो मुद्दई और अभियुक्त दोनों को प्रभु के सम्मुख खड़ा होना पड़ता था और अपना मुकदमा याजक और न्यायी के सम्मुख प्रस्तुत करना होता था। यदि न्यायी यह निर्णय करता कि गवाह झूठा है तो जो कुछ उसने विपक्ष के लिए ठाना था वह उसी के साथ किया जाना चाहिए, तब देश में से बुराई दूर की जा सकेगी। इसे हम 16 से 20 पद में पढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं व्यवस्था विवरण 19 उसके 21 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और तू बिल्कुल तरस ना खाना, प्राण की संति प्राण का, आंख की संति आंख का, दांत की संति दांत का, हाथ की संति हाथ का, पांव की संति पांव का दंड देना। मेरे मित्रों, यही है व्यवस्था। व्यवस्था में कुछ भी दया नहीं थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु यीशु आज व्यवस्था के आधार पर न्याय नहीं करते हैं, वह मुझे अनुग्रह के द्वारा बचा लेते हैं। यदि वह आज मुझे व्यवस्था के आधार पर बचाता तो मैं अवश्य ही हमेशा के लिए खो जाता, क्योंकि मैं कभी भी व्यवस्था का पूर्णता पालन नहीं कर पाता। कानून तो कानून है। आज के संदर्भ में अगर बात करें तो हमने इसके प्रति एक लापरवाह रवैया विकसित कर लिया है, परंतु परमेश्वर अपने कानून की परवाह करता है, अर्थात चिंता करता है, क्योंकि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत इसी का नियम था। मैं कैसे अपने प्रभु का धन्यवाद करूं कि उसने हम पापियों के बदले उस पाप के दंड को जो व्यवस्था के आधार पर हमारे विरुद्ध था मूल्य चुका दिया। अब परमेश्वर का सिंहासन हमारे लिए दया प्राप्त करने का एक स्थान है, एक साथ है, जहां प्रभु यीशु ने अपने लहू को छिड़का और वह वाचा का लहू है। परमेश्वर हमें अपनी दया और अनुग्रह के आधार पर बुलाता है। हमने व्यवस्था का पूर्णता पालन नहीं किया परंतु इसे तोड़ा है, इसलिए हम सब परमेश्वर के सम्मुख दोषी हैं। मसीह ने दाम चुकाया, व्यवस्था की मांग को उसने पूरा किया। अब परमेश्वर पूर्णता स्वतंत्र है कि वह पापियों को अपने अद्भुत और असीम और अनंत अनुग्रह से बचा ले। मेरे मित्रों, यदि आज आप भी बचना चाहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को बचा सकता है। क्या आज आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु आपके जीवन में आए, आपको शांति और आनंद दे? यदि हाँ, तो आप उसे व्यवस्था के अनुसार से नहीं परंतु दया के अनुसार से उसके पास आए। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भंवर में, तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भंवर में। यसुआ यसुआ अब आ भी जा, खोया हूँ घोर नगर में, तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भंवर में। तेरे बिन ये नैया मेरी डोले है बीच भंवर में। यसुआ यसुआ अब आ भी जा, खोया